हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अंबिका की हालत अब खराब हो रही थी। एक तो उसका खाना खाने का मन नहीं कर रहा था और उसके अलावा कल से उसने वेदांश को देखा भी नहीं था। अब उसका बस उसे ही देखने का दिल कर रहा था। उसने कुछ खाया भी नहीं था तो उसे चक्कर भी आ रहे थे। वो अपने बेड से उठी लेकिन एकदम ही लड़खड़ा गई और वापस बेड पर बैठ गई। बेड पर बैठते ही अंबिका की नज़र सामने ज़मीन पर पड़ी। वहाँ कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। अंबिका धीरे से उठकर आगे आई और उसने हल्का सा झुककर देखा। वे किसी के पैरों के निशान थे, वो भी आधे अधूरे से, और सबसे अजीब बात, वे लाल रंग से बने हुए थे। अंबिका को समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि वो लाल रंग और कुछ नहीं बल्कि खून है, और वे निशान भी देखने में किसी लंबी हाइट वाले इंसान के लग रहे थे, और लंबी हाइट का सिर्फ वेदांश ही था जो उसे कमरे के अंदर आता था। अंबिका ने वे पैरों के निशान देखकर कहा, इसका मतलब वो कल रात यहाँ पर आया था, लेकिन उसके पैर में ये चोट कैसे लगी? वो ठीक तो होगा ना? और फिर कहाँ चला गया, सुबह मेरे उठने से पहले ही? क्या वो मुझे इग्नोर कर रहा है? क्या हमेशा मुझे अकेले ही यहाँ पर रहना होगा? कैसे रहूँगी मैं यहाँ पर उसके बिना? अंबिका के मुँह से ये बात निकलते ही उसने तुरंत ही अपने मुँह पर हाथ रखते हुए कहा, मैं तो खुद उससे दूर जाना चाहती हूँ, तो फिर क्यों बार बार उसके बारे में ही सोच रही हूँ? वो आया नहीं, उसके पैर में चोट लगे, हाथ में या फिर सिर फूट जाए, मुझे क्या? मैं तो बस अकेलेपन की वजह से घबरा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है उसके अलावा और कोई नहीं आएगा इस कमरे में, बस इसीलिए, और कोई बात नहीं है। हाँ, मुझे भी किसी की कंपनी चाहिए, मतलब कब तक ऐसे अकेले इस चार दीवारी में बंद रह सकती हूँ मैं? ऐसे यहाँ पर अकेले तो कोई भी पागल हो जाए। अंबिका ने खुद को कन्विंस करने की कोशिश करते हुए ये सब कहा, क्योंकि वो किसी भी तरह वेदांश को इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहती थी, जबकि सच यही था कि वो इस वक्त उसे बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ अक्षय कल रात जब से घर वापस आया था तब से ही काफी ज्यादा डिस्टर्ब और एकदम चुपचाप सा था। उसने किसी से भी कुछ नहीं बोला था। उसके पापा की तबीयत थोड़ी बहुत ठीक थी और वे बिना मदद के भी चल फिर पा रहे थे। देनिका घर का सामान लेने के लिए बाहर गई हुई थी। मानस, अक्षय और उसके पापा तीनों घर में अकेले थे। उसके पापा अपने कमरे में रेस्ट कर रहे थे और मानस के मन में काफी सारे सवाल चल रहे थे। जब से वो वापस आया था उसे ठीक से किसी ने कुछ भी नहीं बताया था, और वो काफी बार अंबिका के बारे में पूछ चुका था। ज्यादातर देविका उसे मना करती थी कि अक्षय से सीधे कोई भी सवाल ना करें। इसीलिए अभी देविका यहाँ पर नहीं थी तो मानस ने इस बारे में अक्षय से बात करने की सोची। मानस ने थोड़ी जिद करते हुए पूछा, अक्षय भाई बताओ ना, अंबिका दी कहाँ है? वो वापस क्यों नहीं आ रही है और वो कब वापस आएगी? ठीक तो है ना? वो उन सब में से सबसे छोटा था, सिर्फ 18 साल का, और अंबिका से बहुत ही ज्यादा क्लोज भी था। जब भी वो घर आता था अंबिका उसे देखकर बहुत खुश होती थी। वे दोनों भाई बहन एक दूसरे से काफी क्लोज थे, खासकर उनकी माँ के जाने के बाद से। अंबिका ने ही सबको माँ का प्यार दिया था, इसीलिए वे सब उसके बिना नहीं रह पा रहे थे। अक्षय ने उन लोगों को थोड़ी बहुत बातें बताई थीं और साथ ही ये भी कि उनकी वजह से अंबिका की जान को भी खतरा हो सकता है, इसीलिए कुछ दिनों तक उन लोगों को बस घर में ही रहना होगा और अंबिका के वापस आने का इंतजार करना होगा। इसीलिए उसके भाई बहन ये बात मान गए थे और अब तक अपने पापा को उन लोगों ने ये सच नहीं बताया था। अक्षय ने एक नज़र मानस की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, वापस ला पाया मैं दी को, किसी काम का नहीं हूँ मैं, बिल्कुल बेकार, यूजलेस इंसान हूँ, और ये सब कुछ मेरी वजह से ही शुरू हुआ, सबका जिम्मेदार मैं हूँ, सिर्फ मैं। ये सब कुछ बोलते हुए अक्षय काफी ज्यादा इमोशनल हो गया और दोनों हाथों से उसने अपना सिर पकड़ लिया। उसे ऐसे परेशान होते देखकर मानस ने उसका हाथ पकड़कर सिर से हटाते हुए कहा, सॉरी भाई, आपकी कोई गलती नहीं है, बस मुझे दीदी की बहुत याद आ रही है, मैंने कब से उन्हें नहीं देखा, वो ठीक तो है ना? कम से कम इतना ही बता दो, वो कहाँ है, क्या मैं उनसे मिलने जा सकता हूँ? अपने छोटे भाई की ऐसी बातें सुनकर अक्षय ने तुरंत ही उसे खींचकर गले से लगा लिया और कहा, नहीं जा सकते तुम वहाँ, बिल्कुल भी नहीं जा सकते, क्योंकि दी ने ही मना किया है, मुझे भी उन्होंने वहाँ पर आने से मना किया है, उन्होंने ही मुझे वापस भेजा, लेकिन वो ठीक है, फिकर मत करो, मैंने उन्हें देखा था कल। अक्षय की बातें सुनकर मानस को इतना तो समझ में आ गया कि वे सब शायद किसी बड़ी मुसीबत में है जिसके बारे में उसका बड़ा भाई उसे ठीक से नहीं बता रहा। शायद वो उसे इन सब से दूर रखना चाहता था। इसलिए मानस ने भी ज्यादा और सवाल नहीं किया, क्योंकि उसे पता था ऐसे टाइम में सवाल जवाब करके वो सिर्फ अपने भाई को और टेंशन देगा। इसलिए उसने समझदारी दिखाते हुए चुप रहना ही ठीक समझा। वहीं उनकी बिल्डिंग के बाहर देविका दोनों हाथों में घर के सामान का थैला पकड़े हुए सोसाइटी के मेन गेट से अंदर आई और अपनी बिल्डिंग के एंट्री गेट की तरफ ही बढ़ने लगी। वो थोड़ी जल्दबाजी में लग रही थी, क्योंकि शाम के खाने का वक्त भी हो रहा था और उसे काफी देर हो गई थी, क्योंकि वो दिन का काम भी अकेले ही निपटा कर घर से बाहर निकली थी। अंबिका के न होने की वजह से सारी जिम्मेदारी उस पर ही आ गई थी। उसे भी अपनी बहन की बहुत याद आ रही थी इस वक्त, लेकिन उसे पता था अक्षय को ज्यादा ही टेंशन में है, इसलिए उसने अक्षय को परेशान नहीं किया और मानस को बाबा का ख्याल रखने को बोलकर जरूरी सामान लेने बाजार चली गई थी। अभी उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ नजर आ रही थीं और वो काफी तेजी से बिल्डिंग के अंदर की तरफ बढ़ रही थी। उसे नहीं पता था, लेकिन किसी की नजरें उस पर टिकी हुई थीं, इसलिए थोड़ा आगे बढ़ते हुए हड़बड़ाहट में सीढ़ियों पर उसने ध्यान नहीं दिया और एकदम ही लड़खड़ा गई तो उसके हाथ से एक थैला छूटकर वहां गिर गया और उसमें का सारा सामान भी जमीन पर बिखर गया। देविका ने संभालने के लिए साइड में लगी हुई रेलिंग को पकड़ा और अपने आप से बोली, क्या किया मैंने, ये जल्दबाजी में अपना ही नुकसान करवा लिया और काम भी बढ़ा लिया, अब और देर लगेगी ये सब उठाने में। इतना बोलते हुए वो वापस नीचे उतर कर आई। अभी वो सिर्फ दो या तीन सीढ़ियां ही चढ़ी थीं और एक थैला को साइड में रखकर दूसरे जमीन पर गिरे हुए थैले और बाकी बिखरे हुए सारे सामान को वो एक एक कर उठाने लगी और तभी उसका हाथ किसी और के हाथ से टच हुआ तो देविका ने नजर उठाकर सामने की तरफ देखा। उसके सामने ही जमीन पर बैठा हुआ लड़का उसका सारा सामान उठाने में मदद कर रहा था। उसके गले में रुद्राक्ष की माला थी और उसने चेस्ट तक ओपन लाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और दाढ़ी भी कुछ बढ़ी हुई थी, लेकिन फिर भी वो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। देविका ने आज पहली बार ही उस लड़के को देखा था, इसीलिए वो कन्फ्यूजन से उसकी तरफ देखने लगी। तभी उस लड़के ने कहा, थोड़ा संभल कर चला करिए, वो तो अच्छा है आपको कुछ नहीं हुआ। देविका ने अपनी आंखें छोटी करके उसकी तरफ देखते हुए पूछा, आप कौन और इतनी फिकर करने की वजह? उस लड़के ने जवाब दिया, मैं कार्तिक और वो मैं बस यहाँ से गुजर रहा था और मुझे लगा शायद आपको मदद की जरूरत हो, बस इसीलिए इस तरफ आ गया। देविका ने सीधे ही कहा, नहीं मैं अनजान लोगों से मदद नहीं लेती। अब तक दोनों ने मिलकर सारा सामान थैली में रख दिया था। देविका ने अपना थैला उठाया और वापस सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई।
गर्दन के पीछे हाथ करके अपने बालों में हाथ डालते हुए कार्तिक ने वहां से जाती हुई देविका की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अनजान तो हम हैं आपके लिए, आप हमारे लिए नहीं, उम्मीद है आप भी हमें जान जाएं। कार्तिक ने भी उसी तरफ अपनी नज़र टिकाए रखी जब तक देविका अपने घर के दरवाजे के अंदर नहीं चली गई और उसके जाने के बाद वो भी मुड़कर वापस दूसरी तरफ चला गया। टू बी कंटिन्यूड। कैसा लगा आज का एपिसोड? वैसे अगर आप लोग स्टार्टिंग से स्टोरी पढ़ने आए हैं तो शायद आप लोग समझ गए होंगे कि कार्तिक कौन है, और अगर किसी को भी पता हो तो कमेंट में बताएं, नहीं तो जिसे कोई भी आइडिया नहीं वो भी कमेंट कर सकता है, हम आप लोगों को कमेंट में रिप्लाई करके याद दिलाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो आगे आने वाले एपिसोड में तो पता चल ही जाना है।